नमस्कार आदाब, मैं सुल्तान अहमद, आज मैं फरीदाबाद में हूं और आज मेरे साथ हैं सतवीर जी। सतवीर जी, फरीदाबाद से दो मैगजीन निकलती हैं, यथार्थ और ट्रूथ। उनके 6 लोगों की संपादक मंडल है और उनमें से एक हैं। आज हमारे साथ बताएंगे कि जो खोड़ी गांव यहां पे और उसके आसपास, जिसमें एक जमाई कॉलोनी और दूसरी कॉलोनियां भी हैं, जहां पे मेहनतकश मजदूरों की जब बस्तियों को तोड़ा गया और ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुआ, जिसमें फरीदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को हर दिन के टारगेट दिए जाते थे कि तकरीबन 1000 घर तोड़ने हैं, लेकिन उससे पहले ये सोचा नहीं गया कि क्या होगा इन मजदूरों का, मेहनतकशों का, जो तकरीबन 1980 के आसपास से यहाँ पे रहते आए थे और उन्हें बसाया गया था क्योंकि यहाँ पे उनको उनसे काम लिया जाता था। तो इन्हीं सब मुद्दों पे सतवीर जी बताएंगे कि क्या उन्होंने यहाँ पे खोड़ी गांव की कॉलोनी में किस तरह का सामना करना पड़ा उन्हें, और जो बाकी दूसरी कॉलोनीज हैं उनमें भी मजदूरों की जो लड़ाई है वो किस तरह से इन्होंने लड़ा, और वहां पे मजदूर को किस तरह से आगे पुनर्वास के जो मुद्दे हैं या उनके अधिकार हैं उन्हें कैसे दिलाया जा सकता है। जी सतवीर जी,
हाँ, ये आपका ये मुद्दा मजदूर की आवाज़ समस्या उठाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं खोरी बस्ती के पास एक सोसाइटी में रहता हूँ और खोरी बस्ती की उजड़ने की प्रक्रिया से आप देश में मजदूरों की आवाज़ समस्या कितनी विकराल है और उसको निपटाने के लिए सरकार की गैर जिम्मेदारी और अन्याय अत्याचार किस हद तक है, ये आप समझ सकते हैं। क्योंकि इन मजदूरों को सन 80 के दशक में, जब यहाँ पे माइनिंग का काम होना था और दिल्ली में बहुत बड़े स्तर पर निर्माण कार्य होने थे क्योंकि एशियन गेम्स होने थे, उसके बाद में कॉमनवेल्थ गेम्स होने थे, इन मजदूरों को लाके वहाँ बसाया गया था क्योंकि खनन का काम या तो रात में या जल्दी सुबह में होता है क्योंकि बाद में नो एंट्री लग जाती है, इसलिए उन लोगों को यहाँ रहने के लिए उस समय मजबूर किया गया था। और यहाँ के जोखिम को सामना करते हुए, जंगली जानवर और दूसरी असुरक्षा को नज़रअंदाज करते हुए, वो मजदूर वहाँ पे रहते आए थे। और अब जब खनन का काम बंद हो गया है और या कम हो गया है, उस समय उनकी ज़रूरत नहीं रही, तो कैसे उनको पर्यावरण के लिए जिम्मेदार ठहरा के दिल्ली की आबो हवा ख़राब करने के लिए, अरावली जंगल को बर्बाद करने की जिम्मेदारी उन पर डाल के उनको जुलाई महीने में, बरसात के टाइम में, कोविड के टाइम में ज़बरदस्ती तोड़ घरों से निकाल के बाहर फेंक दिया गया। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उसी ऑर्डर में ये भी कहा था कि इसी अरावली में खोरी गांव में जो क्षेत्र है, इससे कहीं ज़्यादा एरिया रईस लोगों की, अमीर लोगों के फार्म हाउस में या बड़ी बड़ी चमकीली शिक्षा की दुकानें बनाने में या बड़े बड़े धर्म के नाम पे, गौशालाओं के नाम पे जमीन कब्जाने वाले माफिया के हाथ में है, इनको भी तुरंत तोड़ा जाए। सरकार ने कैसे उन लोगों को 1000 लोगों के तोड़ने के टारगेट को लेके बेदर्दी के साथ तोड़ा और 15-20 दिन में पूरी 1.5 लाख 2 लाख लोगों की बस्ती को बर्बाद करके रख दिया। उसी प्रशासन को अभी वहाँ अभी तक किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट को, कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को, फार्म हाउस को नहीं तोड़ा जा सका है।
सतवीर जी, यहाँ पे आपने मैंने सुना कि इसी खोड़ी के और जो सूरजकुंड थाना है जहाँ पे अरावली पहाड़ है, वहाँ पे एक मानव रत्न यूनिवर्सिटी का भी कैंपस है और तकरीबन 11 एकड़ में वो फैला हुआ है यूनिवर्सिटी, लेकिन क्या उसके ऊपर भी कोई घास गिरी, क्या उसे भी ध्वस्त किया गया?
देखिए, जिस समय ये बात यहाँ बतानी, इसका उल्लेख करना जरूरी है कि जब जुलाई महीने में खोरी बस्ती टूट रही थी, उस समय उसी मानव रचना यूनिवर्सिटी में, जिसका आप नाम ले रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद की अखिल भारतीय सम्मेलन को आयोजित किया गया। उसका आयोजन उसी भल्ला नाम के व्यक्ति ने किया जो इस यूनिवर्सिटी का मालिक है, और उस यूनिवर्सिटी में अभी तक कुछ भी तोड़ा नहीं गया है, बल्कि इसी महीने में, नवंबर महीने में ही उस यूनिवर्सिटी को राष्ट्रपति द्वारा खेल पुरस्कार दिया गया है।
तो ये जो मारम रचना यूनिवर्सिटी है, ये खोड़ी गांव जहाँ पे मजदूरों की बस्ती थी, वहाँ से कितना दूर है, या वो क्या अरावली क्षेत्र में नहीं आता है?
नहीं, ये पूरी तरह अरावली क्षेत्र में आता है। ये उस खोड़ी बस्ती से मुश्किल से 2 किलोमीटर दूर है, और अगर वो अरावली क्षेत्र में नहीं आता तो सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर हैं जिसमें उसको तोड़ने का जिक्र है, जिसमें जो तोड़े जाने हैं, जो मकान तोड़े जाने हैं, जो फार्म हाउस तोड़े जाने हैं, उसमें उसका जिक्र है, उल्लेख है, उसको क्यों होता वो?
तो क्या ऐसा लगता है कि ये जो प्रशासनिक जो समर्थन मिलते हैं ऐसे बड़े कॉरपोरेट हाउसेस को, या सरकार के जो लोग करीब होते हैं उन्हें प्रशासनिक सहयोग की वजह से उनके घर या वो यूनिवर्सिटी आज तक नहीं तोड़ी गई, लेकिन गरीबों की बस्ती तोड़ दी गई?
बिल्कुल, जो जिस तरह से ये हुआ है उससे साफ जाहिर है। अगर इस बात को कोई नकारता है तो वो सच्चाई से आंख मूंदता है, क्योंकि हरियाणा सरकार खुद वहां पे सुप्रीम कोर्ट में कोई ना कोई ऐसा बहाना लेके आती है कि हमें टाइम दे दो, हम ड्रोन से सर्वे करेंगे, जबकि सामने सामने दिख रही है, वो अंधे आदमी को भी अगर पहाड़ में जाएगा तो उसको दिख जाएगी। तो उस बस्ती को तोड़ने के बजाय उसको तो तोड़ने के लिए कोई रहम नहीं किया गया, लेकिन जो ये अमीर लोगों की ऐशगाहें बनी हुई हैं या धन कमाने के अड्डे बने हुए हैं, शिक्षा की दुकानें बनी हुई हैं, उसको गिराने में उल्टा हरियाणा सरकार उनकी तरफ से खड़ी दिखाई देती है।
मजदूरों को आप क्या कहेंगे कि क्योंकि ये हमेशा होता है, कभी मास्टर प्लान के नाम पे, कहीं शहरों की खूबसूरती बढ़ाने के नाम पे उन्हीं मजदूरों को लाया जाता है और वहाँ पे उनसे विकास के काम कराए जाते हैं, जब उनसे काम निकल जाता है तो फिर उन्हें शहर के बाहर धकेलने की कोशिश की जाती है। तो मजदूर कैसे अपने इस पूरी लड़ाई को लड़े और वो कैसे यूनाइट हो ताकि उसकी अपने जो मुद्दे हैं, उनके जो विकास घर के मुद्दे हैं, आवास के मुद्दे हैं, रोजगार के मुद्दे हैं, शिक्षा के मुद्दे हैं, स्वास्थ्य के मुद्दे हैं, उस पर वो सरकार के साथ में अपनी मांग को पुरजोर तरीके से रख सकें और उन्हें हासिल भी कर सकें?
देखिए, इन सरकारों का मजदूरों की आवास समस्याओं को लेकर कितनी गंभीरता है, ये इसी बात से समझ में आती है कि मोदी सरकार ने अपने चुनाव में वादा किया था कि वो 2022 तक हर मजदूर को जहां उसकी झुग्गी है वहीं पे पक्का मकान बना के देगी। उस मोदी सरकार ने इस 7 साल के अपने कार्यकाल में लाखों से कई लाख घर लोगों को बेघर कर दिया होगा। कहीं भी उन्होंने ये मकान बनाए हों या ऐसे कोई उनको घर दिए हों ऐसा नजर नहीं आता। अकेले फरीदाबाद में 2 लाख के करीब लोग खोरी बस्ती से उजड़े हैं। अभी तक भी जैसे वो टूटे फूटे छोटे छोटे मकान हैं, वो कुछ लोगों को भी नहीं दिए जा सके हैं। तो जो जरूरत है उसके अनुसार इनको बहुत बड़े स्तर पे मकान बनाने होंगे गरीब लोगों को देने के लिए, लेकिन ये व्यवस्था नहीं बनाने वाली है।
आंदोलन और कैसे पुरजोर किया जाए, क्योंकि अभी किसानों को की लड़ाई 1 साल आंदोलन के बाद में किसानों ने जीता, बिल वापस हुआ, लेकिन ये जो आवास के मुद्दे हैं या स्वास्थ्य के मुद्दे हैं या शिक्षा के मुद्दे, मजदूर के आंदोलन ऐसे ही कब बहुत अच्छे तरीके से हो ताकि उनको अपने अधिकार हासिल हो सके?
देखिए, किसानों के शानदार आंदोलन ने ये साबित कर दिया है कि ये सरकार अगर किसी किसान मजदूर की बात सुन सकती है तो वो तभी संभव है जबकि पूरी ताकत के साथ संगठित होकर और बिना समझौता किए, बिना इनकी जातियों जुल्मों के आगे झुके, बिना इनके विघटनकारी विभाजनकारी बांटो राज करो नीति को बलि पड़े उसका शिकार हुए बगैर अगर आप लड़ेंगे तभी आप कुछ हासिल कर सकते हैं। किसानों ने जो हासिल किया है, मजदूर अगर उनके साथ मिल जाएं तो और भी बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है।
कहते हैं कि पूंजीवाद जो व्यवस्था है, पूंजीवादी जो पूरी व्यवस्था है, वो अगर किसी के सामने झुकता है या डरता है तो वो यूनियन से डरता है और मजदूर के समूहों से डरता है। तो वो यूनियन, उस तरह की जो मजदूर की जो यूनियन है, उसे कैसे, हिंदुस्तान में लगातार कोशिश रहती है कि उसे कमजोर किया जाए, किसी भी तरह से संगठित न हो मजदूर, उसे कमजोर किया जाए, वो कैसे आगे आप देखते हैं कि आने वाले दिनों में मजदूर संगठित होंगे और अपने संघर्ष की लड़ाई को और मजबूत करेंगे?
देखिए, मजदूरों की जिंदगी ही है संघर्ष। मजदूरों को जिंदा रहने के लिए संघर्ष करना होता है और मजदूर निश्चित रूप से अपनी मुक्ति के लिए संघर्ष शुरू करेंगे, इकट्ठे होंगे, क्रांतिकारी चेतना से लैस होंगे और जिस तरह किसानों ने इस व्यवस्था को पीछे हटने के लिए मजबूर किया है, इस पूंजीवादी शोषणकारी व्यवस्था का खात्मा मजदूरों के हाथ ही होना है, मजदूरों को ही ये ऐतिहासिक काम करना है और वो निश्चित रूप से होगा। कभी कभार ऐसी प्रतिक्रिया वाली दौर आते हैं, वो दौर अब खत्म हो चुका है और मजदूर जाग चुका है और ये जगाने में किसानों की बहुत बड़ी भूमिका है। तो आगे आने वाले समय में हम देखेंगे कि मजदूर आंदोलन, किसान आंदोलन और मजदूर किसान संयुक्त आंदोलन इस देश में नजर आएंगे और इस पूंजीवादी शोषणकारी व्यवस्था का खात्मा होगा, निश्चित होगा।
धन्यवाद सतवीर जी। आप सुन रहे थे सतवीर जी को, आप संपादक मंडल से हैं यथार्थ और द ट्रूथ मैगजीन से। आप इसी तरह से हम मजदूरों और श्रमिकों की आवाज आप तक पहुंचाते रहेंगे, उनकी मांगों को उठाते रहेंगे। सुनते रहें मोबाइल वाणी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।